मंगल करण वीतराग विज्ञान नमोताहि जाते भये अर्हन्तादि महा जो विद्यादि सागर सुधी विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं देशी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं हैं सतत केवल ज्ञान पाने।
बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंदु स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की,
जबकि परम पूज्य मुन्ना श्री क्षमा सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुन्ना श्री भव्य सागर जी महाराज की, मुनि संघ की।
हम लोग पिछले कई दिनों से एक ही बात पर बार बार विचार कर रहे हैं और वास्तव में संसार शरीर और भोगों के बारे में निरंतर चिंतन करना यह हमारे जीवन को परिवर्तित करने की एक सबसे सरलतम प्रक्रिया है। जैसे हम बुरे विचारों को निरंतर करते रहते हैं और उन विचारों से प्रभावित होकर नहीं चाहते हुए भी अनायास बुरा कर बैठते हैं, ऐसे ही अगर हम अपने जीवन में और अच्छे विचारों को निरंतरता दें तो वे अच्छे विचार हम नहीं चाहेंगे तब भी हमारे जीवन में और परिवर्तन करे बिना नहीं रहेंगे। ये हमने पिछले दिनों समझा। हमने विचार किया है इस संसार में दिखने वाली वस्तुओं के बारे में कि वे सब जो वस्तुएं दिखाई देती हैं वे नश्वर हैं, क्षणभंगुर हैं, हम उनमें शाश्वत हैं ऐसा भ्रम पाल लेते हैं जिससे कि हमें दुख और सुख का अनुभव होता है। जो चीज नश्वर है उसके मिल जाने में भी क्या सुख और उसके विलग हो जाने में भी क्या दुख। वास्तव में ऐसा विचार करना चाहिए, जो स्वयं अपना त्राण नहीं कर सकता, जो स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर सकता इस संसार में, उसकी शरण जाने से क्या सुख मिलने वाला है। मैं ऐसी शरण खोजूं जो कि धर्म की शरण है, जो शाश्वत है, जहाँ कि मेरे अपने इस संसार के भ्रमण को मैं नष्ट कर सकता हूँ। वास्तव में वही शरण श्रेष्ठ है। जो स्वयं जन्म मरण से ग्रसित हैं, चाहे वो दल बल देवी देवता कोई भी क्यों ना हो, वे मुझे शरण नहीं दे सकते। इस संसार में चारों गतियों में अपनी अज्ञानता के कारण सभी जीव दुख पाते रहते हैं। ये संसार ऐसा ही है, इसका स्वभाव ही ऐसा है। मैं इस संसार में सुख पाने का उपाय तो करता नहीं हूं, सुख पाने की चेष्टा अवश्य करता हूं, सुख पाने की भावना अलग अवश्य करता हूं कि मुझे सुख मिले इस संसार में, जबकि इस संसार की तासीर ही है कि अगर आप अज्ञानी हैं तो ये संसार आपको चारों गतियों में सिवाय दुख के और किसी चीज का इंतजाम नहीं करता है। सिर्फ यहां अपनी अज्ञानता से हम दुख ही पाते हैं। हम देखें तो यहां जो भी भला और बुरा हम करते हैं उसका फल भोगते समय हम अकेले ही हो जाते हैं। करते हम चार लोगों और 40 लोगों के साथ, करते हम बहुत लोगों के साथ हैं, संभव है। जीते हम बहुत लोगों के साथ हैं, संभव है। लेकिन जब उन सब चीजों का फल भोगना पड़ता है तो हम अकेले ही पड़ जाते हैं। अपने शुभ और अशुभ कर्म का फल भोगने में हम बहुत अकेले हैं, अपने जन्म मरण की पीड़ा भोगने में हम बहुत अकेले हैं। यह बात हमारे मन को क्या देती है? ये हमारे मन को स्वाधीन बनने की प्रेरणा देती है कि जब हम अपने कर्म का फल भोगने में अकेले हैं तो क्यों ना फिर हम इस तरह अपने जीवन को बनाएं कि वे ही कर्म करें जिनका कि फल हम शांति से भोग सकें, जिनके फल भोगने में हमें संक्लेश हो, हम उन कर्मों को ही क्यों करें। फिर हमने विचार किया कि ये जो शरीर हमारे साथ दिखाई पड़ता है और जिन जिन चीज़ों को मैं अपना मानता हूँ वे भी मेरे से अलग ही हैं। मैं जड़ वस्तुओं को अपना मान लेता हूँ लेकिन जड़ वस्तुओं का स्वभाव अलग है, मेरा अपना स्वभाव अलग है। वे अचेतन रूप हैं और मैं चेतन रूप हूँ। ऐसा अपने से पर पदार्थों के बारे में विचार करना, अपने से जो पृथक हैं उनको पृथक मानना, उन्हें एक मानने का जो भ्रम हमने पैदा कर लिया था उसे तोड़ देना, वास्तव में देखा जाए तो संसार की वास्तविकता का बार बार विचार करने से हमारे भ्रम टूटते हैं। देखिए, जो चीज़ें शाश्वत नहीं हैं उनको शाश्वत मान लिया, वो एक भ्रम टूट गया। जहाँ शरण नहीं है वहाँ हमने शरण मान ली थी, वो एक भ्रम टूट गया। संसार में सुख मिलेगा लेकिन मालूम पड़ा कि नहीं, संसार में सुख मिलेगा कैसे, तो ये एक भ्रम था वो भी टूट गया। सोचते थे कि सब लोग हमारे साथ मिलके कर रहे हैं सो हमारा भी इनको भोगना पड़ेगा, ये भ्रम भी टूट गया कि अपना अपने को ही भोगना पड़ेगा। ये भ्रम था कि ये सारी चीज़ें जो दिख रही हैं वो मेरे साथ हमेशा रहेंगी, वो भी नहीं रहती। जब हम जाने लगते हैं तो ये सब पीछे छूट जाती हैं, इसका मतलब है ये मेरे से अलग ही थी। इस शरीर के बारे में भी ये भ्रम है कि इसको नहलाऊंगा धुलाऊंगा तो बड़ा सुंदर हो जाएगा, लेकिन ये भ्रम भी टूट जाता है। थोड़ी देर तक तो ये ठीक रहता, फिर इसके बाद फिर गंदा हो जाता है। अपवित्रता इसका स्वभाव है, तो मैं इसको जान लूं और उतने ही साफ सुथरा रखूं जितना आवश्यक है। अनावश्यक रूप से इसके पीछे अपना वक्त जाया करूं व्यर्थ, तो ये तो मेरा ठीक नहीं रहेगा व्यवहार। तो इस तरह हम अपने देखें तो इन भावनाओं के चलते हम अपने जीवन को परिष्कृत कर सकते हैं, बढ़िया कर सकते हैं। बस इतना ही है, हम भ्रम में जीना पसंद कर रहे हैं तो हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। जो लोग अपने भ्रम को तोड़ना चाहते हैं, मोह को तोड़ना चाहते हैं, वे इन अनुप्रेक्षाओं के द्वारा अपने उस मोह को तोड़ सकते हैं। हम देखें तो यहाँ निरंतर हम मन वचन काय की क्रिया करते हैं, कोई ना कोई कषाय है, उससे हमारे संस्कार रोज प्रबल होते चले जाते हैं, खोटे भी और भले भी। और ये जो एक कर्मों के आने की प्रक्रिया है वो निरंतर चलती रहती, कभी नहीं रुकती है, लेकिन ये घाटे की प्रक्रिया है। इसलिए मुझे मन वचन काय की क्रियाओं को संभाल लेना चाहिए, क्योंकि उसके द्वारा निरंतर कर्मों का आश्रय होता रहेगा तो मेरा संसार बढ़ता चला जाएगा। मुझे व्रत नियम संयम और सच्चे देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा, इन चीज़ों को अपने जीवन में शामिल कर लेना चाहिए, जिससे कि मेरे मन वचन काय की क्रिया से होने वाले आश्रयों में जरा सा रुकावट आ जाती है। ध्यान रखिएगा, सच्चे देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा हमारे कर्मों के आगमन को परिवर्तित कर देती है। हाँ, हमारे व्रत नियम संयम हमारे कर्मों के आने को रोक देते हैं, ये सारी चीज़ें संवर करने में सक्षम हैं। और अगर हम अपनी इच्छाओं का निरोध करना शुरू कर दें, थोड़ी सी तपस्या शुरू कर दें, तो फिर हमारे जो अज्ञानतापूर्वक बांधे गए कर्म हैं वे भी बाहर होना शुरू हो जाते हैं। देखिए, आश्रय दोषकारी है ऐसा विचार निरंतर करना, यही तो आश्रय अनुप्रेक्षा है। संवर मेरे लिए हितकारी है, निर्जरा मेरे लिए हितकारी है, इस तरह से मैं विचार करूं तो यही तो संवर और निर्जरा अनुप्रेक्षा है। कर्मों के आने का रुकना संवर है, और अज्ञानतावश बांधे गए कर्मों को धीरे धीरे अपने आत्मा में से हटाते चले जाना, पार्शियल डिसइंटीग्रेशन जिसको कहते हैं, वो निर्जरा कहलाती है। और निर्जरा मेरे लिए श्रेयस्कर है, लेकिन एक निर्जरा वो है जिसमें कर्म अपना फल देकर के समय पाकर के चले जाते हैं, उससे मेरा कोई ज्यादा लाभ नहीं होता है। मेरा लाभ तो है कि मैं अपनी इच्छाओं को अपने बस में रखूं, उनको जीतूं, जिससे कि जो कर्म बंधे हुए हैं वे अपना फल दिए बिना ही और नष्ट हो जाते हैं, ऐसी जो अविपाक मुद्रा है वो मुझे हितकारी है, ऐसा अपन ने विचार किया था। आज थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ते हैं। हम सोचते हैं कि ये संसार हमारे चलाए चल रहा है, ऐसा हमें लगता है, या कि कोई और है जिसने कि इस सृष्टि को बनाया है, कोई और है जो इसका पालन पोषण करता है, कोई और है जो एक दिन आएगा और इस पे प्रलय लाएगा और सारी सृष्टि को नष्ट कर देगा। ऐसा हमारे अंदर तरह तरह के विचार आते हैं। अपने विचारों को जरा दुरुस्त कर लें, अपने विचारों को जरा ठीक कर लें, वास्तविकता जान लें कि ये जो एक सृष्टि दिखाई देती है, जो मेरे आने से पहले भी थी, मेरे यहां से चले जाने के बाद भी रहेगी, जो हमेशा से है, उस सृष्टि का कोई बनाने वाला है क्या? क्या कोई उसे मिटा सकता है? क्या कोई उसे मेंटेन कर रहा है? उसकी सास संभाल करने वाला कोई है? अगर देखा जाए तो बहुत विवादास्पद है ये चीज की ये जो सृष्टि दिखाई दे रही है, जो लोग दिखाई दे रहे हैं, वो किसने बनाया है? अगर किसी ने ये लोक बनाया है तो उस बनाने वाले ने कहां बैठ के ये लोक बनाया है? इसके पहले वो जगह तो थी जहां बैठ के उसने इस लोक को बनाया होगा, और वो स्वयं था, तो फिर उसे किसने बनाया? फ्रॉम वेरी बिगिनिंग हु वॉज फर्स्ट, कौन था वो जो पहला आदमी था सृष्टि में? तो ऐसा विचार करने पे लगता है कि नहीं, अनादिकाल से जो चीज चली आ रही है उसे कोई स्टार्ट नहीं करता है, वो तो हमेशा से है। जो चीजें शाश्वत हैं वे हमेशा से हैं और हमेशा रहती हैं। जैसे एक चक्र पर कहां से शुरू करें, कहां से बिगिन, अपन कह सकते हैं कि यहां से बिगिनिंग होगी इस चक्र की और यहां जाके एंड हो जाएगा। अब जहां से उस वर्तुल पर, उस सर्कल पर जहां से शुरू करना चाहें वहां से बिगिन, और जहां खत्म करना चाहें वहां पर खत्म। एक एक सृष्टि है जिसकी रचना हम करते हैं, उसके बनाने वाले हम, उसको मेंटेन करने वाले हम, उसको डिस्ट्रॉय करने वाले, नष्ट करने वाले हम। वो जो एक सृष्टि हमने अपने राग द्वेष की अपने चारों तरफ बना रखी, उसके कर्ता भोक्ता और स्वामी तो हम हैं, लेकिन ये जो छह द्रव्यों से मिलकर बना हुआ लोक है, ये जो सृष्टि है, वो किसी की बनाई नहीं है। किन्हू न करे न धरे को, षट द्रव्य मई न हरे को, सो लोक माही बिन समता, दुख सहे जीव निरुद्धता। हम अपने अहंकार और संकलेश, दोनों ही चीजें हैं, जहां समता है वहां ना अहंकार है ना संकलेश है, लेकिन हम अपने उस समता परिणाम को खो बैठते हैं और अहंकार कर लेते हैं। अगर थोड़ा सा भी हम कुछ बना देते हैं तो हम अहंकार करते कि मैंने बनाया, और थोड़ा बहुत अगर हम कुछ मिटा देते हैं तो हम उस समय भी अहंकार कर लेते कि देखा मैं मिटा भी सकता हूं, और कोई और मिटा देता है तो हम संकलेश भी कर लेते हैं, अहंकार भी करते हैं, संकलेश भी करते हैं। बस यही हमारे दुख का कारण है इस लोकाकाश में। लोका लोकाकाश माही फिर निराधार जानो, पुरुष रूप कर कटी भये षड द्रव्यं सो जानो, इसका कोई न करता हरता, अमित अनादि है जीव और पुद्गल नाचे यावे, कर्म उपाधि है। यह जो एक हम निरंतर मन वचन काय की क्रिया करते हैं और कोई ना कोई कषाय उसके साथ लगी हुई है, वो जो हम अपने अपने संसार की रचना करते हैं, वो इस लोक में ही रचना करते हैं। इस लोक की रचना हम नहीं करते हैं, इस लोक में रह करके अपने संसार की रचना करते हैं और इसमें भटकते चले जाते हैं। हमारा हम एक पात्र की तरह हैं, जैसे कि नाटक में कोई पात्र अपने विभिन्न रूपों में अपनी कला का प्रदर्शन करता है, ऐसे ही हम कभी यहाँ पुरुष के रूप में उतरते हैं, कभी माँ के रूप में, कभी बहन के रूप में, कभी भाई के रूप में, पता नहीं कितने रूपों में हम यहाँ अपना पार्ट अदा करने के लिए यहाँ आते हैं, रंगमंच है ये, तो बहुत बड़ा रंगमंच है जिस पर कि निरंतर कोई ना कोई खेल चलता रहता है। वो जो नाटक है वो तो एक रात शुरू होता है 10 बजे, 2 बजे, 3 बजे तक खत्म हो जाता है, लेकिन ये तो 60-70 साल तक चलता है। एक ही जिंदगी नहीं, कई कई जिंदगियों तक हम कितने सारे रूप बना करके, और उन्हीं में हम गाफिल हो जाते हैं। वैसे ही मान लेते हैं अपने आप को कि मैं देखो मैं राजा, जैसे कि कोई राजा का पार्ट करे और थोड़ी देर को मान ले कि मैं राजा और सबको हुक्म दे रहा है, लेकिन जब वो उससे नीचे उतरता है नाटक के पूरा करके अपनी ड्रेस उतार के, तो उसको पता लगता है कि मैं तो वही गरीब सा आदमी है, बन गया था जरूर राजा। सपने में राजपद पायो, उठ मूरख रुदन मचायो। हम भी यहाँ पर इसी तरह से जो है और इस भ्रम में जीते हैं, और एक सपना हम देखते हैं इस लोक के अंदर अपने उस सपने में। इसलिए तो शायद उर्दू में बेडरूम को ख्वाबगाह कहते हैं, हाँ, जहां हम स्वप्न देखते हैं। हमारे सोने के कमरे को वो उर्दू में कहते हैं ख्वाबगाह। तो बड़ा ठीक शब्द रखा हुआ है कि हम जैसे कि सोते समय स्वप्न देखते हैं, लेकिन एक जो है स्वप्न हमारा अपने जागते समय का स्वप्न भी हम देखते हैं और नाना रूपों में अपने को मान लेते हैं, जबकि हमारा अपना ओरिजिनल वो रूप नहीं है, पर हम अपने उस वास्तविक रूप को भूल जाते हैं और भ्रमित हो जाते हैं। लोक अनुप्रेक्षा हमें सिखाती है कि इस लोक का स्वरूप क्या है, उस लोक के बीच मेरा अपना स्वरूप क्या है, आत्मा का स्वरूप क्या है। मैं इस लोक में जो विभिन्न रूपों में और अपना जीवन व्यतीत करता हूं, वो मेरे रूप हैं, वो मेरा वास्तविक स्वरूप नहीं है, वो मेरा अपना स्वभाव नहीं है, वो मेरे अपने कर्मों से प्रेरित कोई संयोगी अवस्था है। हम सब कर्मों से प्रेरित एक संयोगी अवस्था को ही अपना मानकर उसमें जी रहे हैं। मैं मनुष्य हूं, मनुष्यपने का एहसास होना, कोई पशु है तो उसको पशुपने का एहसास होता है, कोई देव है तो देवपने का एहसास होता है, नारकी है तो नारकीपने का। ये जो विभिन्न प्रकार के रूपों में हम रहते हैं और उसी रूप का हम एहसास करने लगते हैं, वो सब नाम कर्म के उदय से है। बाकी ना हम नारकी हैं, ना देव हैं, ना मनुष्य, ना तिर्यंच, हमारा अपना स्वभाव अलग है। हम अगर इस तरह से अपने स्वभाव का विचार करें, इस लोक के स्वभाव का विचार करके अपने स्वभाव का विचार करने की सलाह ये अनुप्रेक्षा हमें देती है। अकेले लोक के स्वरूप का चिंतन कर लेना लोकानुप्रेक्षा नहीं है। सामान्य रूप से तो यही समझा जाता है कि 6 द्रव्यों से मिलके लोक बना है, और अलोकाकाश और लोकाकाश इसके 2 भेद हैं। लोकाकाश में भी ऊर्ध्व लोक है, मध्य लोक है और अधोलोक है। उनमें अधोलोक में नारकी जीव रहते हैं, मध्य लोक में मनुष्य तिरंच रहते हैं, और ऊर्ध्व लोक में जो है देवों के निवास स्थान बने हैं। इस तरह जो है बीच में एक राजू लंबी, एक राजू चौड़ी, एक राजू बने डेफ्थ, तो उसकी 7 राजू है, 14 राजू ऊंची है, ऐसी तृष्णाली है जिसमें जीव भरे हुए हैं। इस लोकाकाश में अनंत जीव ठसाठस भरे, ऐसा विचार करना हम सोचते हो गई लोकानुप्रेक्षा। बड़ा आसान है ऐसा तो विचार कर लेना, कभी भी बैठ के विचार कर सकते, लेकिन उसके बीच में मेरी अपनी एग्जिस्टेंस क्या है, मेरा अपना आत्म स्वरूप क्या है, मैं यहाँ क्यों भटक रहा हूँ, मैं यहाँ क्यों भ्रमित हो रहा हूँ, अपने अहंकार और अपने संक्लेश की वजह से, मैं अपने उस समता भाव को छोड़ने की वजह से यहाँ भ्रमित हो रहा हूँ। मेरी स्थिति ठीक ऐसी है जैसे कि किसी बैलगाड़ी के नीचे और धूप से बचने के लिए, और एक बकरी खड़ी हो गई थी, और जब बैलगाड़ी चली थी तो बकरी उस धूप के बचने के लिए उस थोड़ी देर उस छाया में चलती जाती थी, फिर बाद में उसे लगा कि बैलगाड़ी तो मेरी दम पे चल रही। जैसे एक छोटा सा बच्चा जो है पीछे से और स्कूटर में धक्का देता है, और धक्का देते देते फिर मन में सोचता है कि मैं ही इसको चला रहा हूँ। ठीक ऐसा ही हमारा है कि ऐसा लगता जैसे कि सारा संसार हम चला रहे हों। नहीं लगता आपको? लगता तो होगा, कहता कोई नहीं है, है? लगता तो सबको है कि हमारे अनुसार चल रहा सब, देखो हमारे ऊपर है सब, घर की जिम्मेदारी हमने हो गए तो सब चौपट हो जावे, है? यही तो अहंकार था मैना सुंदरी के पिताजी को कि हम तुम्हें खिला पिला रहे हैं, सो एक दिन अपनी दोनों बेटियों से पूछ लिया था, सुमेना सुंदरी ने कहा था कि हम अपने भाग्यों को खात हैं। सुकन्या, हम बते हैं तुम्हें, तुम अपने भाग्यों को खात, अब हम कोड़ी से करें ब्याह। ऐसे ही तो इसी बात पे तो हो गई थी, अहंकार वश ही तो हुआ था। वो दूसरी ने कह दिया था कि हम तो आपका दिया पहनते उड़ते, आपका दिया खाते हैं। ऐसा कोई कहे तो हम शांति से, हमें बड़ा हमारा अहंकार पुष्ट हो जाते कि हाँ हमारे दम पे चल रहे तुम, जबकि सब अपना पुण्य पाप लेकर के आए हैं, ध्यान रखना। लेकिन हम ऐसा अहंकार कर देते हैं कि हमारी फैमिली को हम मैनेज कर रहे हैं, वरना तो ये सब रोड पे आ जाते। हो सकता है हम कमाते नहीं, अगर तो हम रोटी नहीं बनाते, अगर तो सब भूखे रह जाते, और हम कमाते नहीं तो पैसा कहां से आता। ऐसा अहंकार, जबकि हम निमित्त मात्र हैं उस क्रिया में। वस्तु का परिणमन तो अपने अनुसार हो रहा, अपनी योग्यता के अनुसार हो रहा है। चावल हमने पकाने रखे हैं, सो भात बन रहे हैं, कछु हम नहीं बना रहे, उनमें बनने की सामर्थ्य है, क्या करें। लेकिन ऐसा लगता है जैसे कि मैं बना रहा हूं, मैंने बनाया है, मैंने किया है। ये कदम कदम पर ऐसे अहंकार से भर करके हम जीते हैं, और जब कोई काम बिगड़ जाता है तो संक्लेशित होते हैं। जैसे कि हम कर रहे हो ना, जब हम कर्तापने का भाव लाएंगे तो अहंकार और संक्लेश दोनों भोगना पड़ेंगे। तब इस लोक में दूसरी चीज कि मैं कोई इसका कर्ता धरता नहीं है, इस बात का विश्वास रख के मैं अपने कर्तापने को जरा विड्रॉ कर लूं, मैं अपने कर्तापने को छोड़ दूं। तो पहली चीज कि मैं अपना भ्रम तोड़ूं, दूसरी चीज अपने इस कर्तापने से विमुख हूं, और तीसरी सबसे बड़ी चीज कि जब इस सृष्टि में मैं ही अकेला नहीं हूं, अनंत जीव यहां पर, अनंत अनंत जीव अपना अपना लाइफ साइकिल पूरा कर रहे हैं, अपना अपना संसार भोग रहे हैं इस लोक में रहकर, तो सबके प्रति मेरे मन में आत्मीयता तो होनी ही चाहिए, मेरे मन में सबके प्रति प्रेम होना चाहिए। आत्मवत सर्वभूतेषु, जब सबके भीतर जीवन है मेरे जैसा ही है, तब फिर मैं सब में उस जीवन को देखूं, उसे समझूं। अगर इस तरह हम अपने हृदय में, जैसे कि ये पूरा संसार अगर अपन ये लोग पूरा का पूरा देखें, तो अपने ही पूरे शरीर में समाया हुआ है पूरा लोक, तभी तो इस लोक और अलोक दोनों को केवल ज्ञान में झलकते हुए केवल ही भगवान स्पष्ट देखते हैं। उन्हीं के भीतर देखा जाए तो सारा लोक हमारे ही भीतर है। 14 राज उतंग नव लोक पुरुष संठान, तामे जीव अनादिते भरमत हैं बिन ज्ञान। 14 राज उतंग नव लोक पुरुष संठान, इस लोक का आकार कैसा है? पुरुषाकार। ये एक एक मनुष्य को अगर खड़ा कर दिया जाए तो तीनों लोक जो है ऊर्ध मध्य लोक उसके ही भीतर दिखाई देने लगते हैं। ये विचार हमारे भीतर आए अगर कि सारा लोक मेरे भीतर है, तो मैं फिर इस लोक के साथ कैसा व्यवहार करूं, किस तरह का मेरा व्यवहार होना चाहिए, ये तीसरी चीज है। कर्तापने से मुक्त होना, भ्रम में नहीं जीना, और तीसरी बात कि सारे लोगों के साथ प्रेम से जीना, क्योंकि सब यहां रह रहे हैं। जरा जरा सी जगह, एक एक इंच जगह के लिए कोर्ट में केस मत लगाना, अगर सचमुच लोकानुप्रेक्षा कर रहे हो तो। एक एक इंच जगह के लिए वर्षों लड़ते रहते हैं, और ध्यान रखना 6 महीने से ज्यादा अगर कषाय चले तो मिथ्यात्व के साथ चलेगी, अनंतानुबंधी कषाय है। और ये जो दो दो तीन तीन साल तक केस चलते हैं, अपने को सम्यक दृष्टि मानने वाले लोगों के सम्यक दर्शन पे प्रश्न चिन्ह लग जाता है। आपका कोर्ट में केस चल रहा है, इसका मतलब है कि आपके सम्यक दर्शन पे प्रश्न चिन्ह लग गया, क्योंकि वो कोर्ट में केस एक बार लगता है तो 6 महीने से पहले तो उसकी सुनवाई उनवाई नहीं होती, वर्षों चलता, 10-10 साल तक कई लोगों के, कई सेठ इनकम टैक्स सेल टैक्स के कई केसेस लगे होंगे, कहो बड़े बड़े लोगों के लगता है। लेकिन वास्तविकता को तो जानना ही पड़ेगा, और स्वयं जानना चाहिए, और तुरंत उससे विड्रॉ कर लेना चाहिए कि हाथ जुड़े भैया छोड़। अभी एक व्यक्ति 2 प्रतिमा लेने आए थे आचार्य श्री के पास कुंडलपुर में, मुझे धीरे से एक व्यक्ति ने कहा कि महाराज इनको 2 प्रतिमा तो दिला दो, सो ठीक है, बाजू बारे से इनके मकान को कछु झगड़ा है जी, अगर छोड़ देवे तो बहुत अच्छा है।
हमने उनसे जरा सा इशारा किया तो सोच में पड़ गए कि अन्य बात तो ठीक कह रहे हैं आप, इतनी सड़ी सी बात पर मैं उनसे और मेरी टसल चलती है और जिंदगी निकल गई है और मैं दो प्रतिमा लेने की तैयारी कर रहा हूं। फौरन जो है एक कागज उठाया और उस पर लिखा कि मेरा आज से उन बाजू वाले के जो झगड़ा है मैं अपनी तरफ से उसका राजीनामा और जो भी है वो करता हूँ। वो मकान उनको दिया, वो सारे केस वहाँ जाके और अपने दस्तखत नीचे करके उन्हीं व्यक्ति जिनने मुझे कहा था उनके पास कहा कि हम तो दो प्रतिमा लेके यहाँ हैं, जो कागज उनको दे दियो कि एक ही आधार पर भी अपनों सफरा फा दफा कर लेवें जब तक हम आउट। ये है परिणामों की निर्मलता। अगर हम वास्तव में इस अनुप्रेक्षा को भावना को करना चाह रहे हैं तो हमें तुरंत ऐसे निर्णय लेना चाहिए कि जब जब मेरे अनंत संसार को भटकाने वाला जो मिथ्यात्व है वो मेरे इन छोटे छोटे से कामों से और प्रबल हो रहा है तो मैं क्यों इन कामों में पड़ूं और छोड़ दूं। लोकानुप्रेक्षा यही सिखाती कि जरा जरा सी जमीन, जरा जरा सी चीजों को लेकर के एक दूसरे के बीच में तकरार नहीं होनी चाहिए बल्कि प्रेम बढ़ना चाहिए। यहां सब जीव अपने सुख दुख का फल भोग रहे हैं, मैं भी अपने सुख दुख का फल भोग रहा हूं, ऐसा विचार करके किसी के जीवन में मेरे से अतिरिक्त दुख ना पहुंचे। मैं किसी को सुखी तो कर नहीं सकता हूं पर मेरे द्वारा किसी को दुख ना पहुंचे। मैं कोई मुझे अपने सुख में निमित्त बनाना चाहे तो बनाए, क्योंकि सुख दुख में निमित्त भर बनते हैं। ना हम किसी को सुखी कर सकते हैं ना हम किसी को दुखी कर सकते, जबरदस्ती आप किसी को दुखी नहीं कर सकते। ध्यान रखना जब तक कि कोई दुखी नहीं होना चाहे तब तक, जब तक उसके असाता का उदय नहीं आया है तब तक किसी को आप कितने उपद्रव खड़े कर दो लेकिन उसे दुख नहीं हो सकता। और किसी के असाता का उदय हो, सैकड़ों सामग्री सुख की दे दो, चारों तरफ बिछा दो उसके सुख की सामग्रियां, सुखी नहीं हो सकता वो। ये नियम है, हम इस वास्तविकता को जान करके इस लोकानुप्रेक्षा को करते हुए और प्राणी मात्र से और प्रेम पैदा करने की भावना करें। लोकानुप्रेक्षा यही सिखाती है। आपने आज तक तो लोकानुप्रेक्षा में यही समझा होगा कि बस लोक के स्वरूप का चिंतन कर लेना घंटे भर बैठ के और बाकी 23 घंटा सब दुनिया भर को काम करना, बाकी हो गया लोकानुप्रेक्षा। संस्थान विजय नाम के धर्म ध्यान पे कभी अपन चर्चा करेंगे, उसमें भी लोक के स्वरूप का ही चिंतन किया जाता है। लेकिन लोक के स्वरूप का चिंतन करते समय कर्तापने से मुक्त होना और इस लोक को किसी ने बनाया है ऐसे भ्रम से मुक्त होना और साथ में प्राणी मात्र के प्रति मैत्री और करुणा का भाव हमारे भीतर उमड़ जाए तब समझना कि लोकानुप्रेक्षा अब हमारी शुरू हो गई है। एक नाथ एक संत हुए हैं दक्षिण भारत, उनकी घटना सुनाता हूं मैं। कैसे हम सब जीवों से और संबंध जोड़ सकते हैं, कैसे हम सबको अपने भीतर जगह दे सकते हैं। हमारे हृदय में इतनी भी जगह नहीं है, लोग तो सारे जीवों को जगह दे रहे हैं बताइए, और हमारे हृदय में इतनी सी भी जगह नहीं है कि हम सब जीवों को वहां स्थान दे सकें। ऐसी भावना हमारे भीतर आनी चाहिए। वो एक नाथ जो बचपन में 10-11 साल के थे तो उनकी माँ को तकलीफ थी तो उन्होंने कहा कि जाओ तो बेटे और क्या लेकर के आओ, पेड़ कोई पेड़ की छाल तो उसकी दवाई बनाऊं और उसको लगाऊं तो ठीक हो जाए। तो वो गए, कुल्हाड़ी हाथ में ले ली और गए और पेड़ की छाल निकाल ली है तो निकालने लगे। जब छाल निकाल रहे थे और छाल निकाल भी ली उन्होंने तो उनके मन में एक विचार निरंतर आ रहा था कि ये पेड़ में भी तो जीवन है ऐसा कहा गया है, तो जब इसमें भी जीवन है और मैं इसके ऊपर की जो इसकी छाल है वो निकाल रहा हूं तो इसको भी तो दुख होता होगा। कैसा दुख होता होगा, अब ये कुछ कहता तो है नहीं पर दुख तो जरूर होता। अब कैसा होता होगा ये कैसे पता करें। तो आधे रास्ते चलते चलते और इसी गुणा भाग में लगे थे कि कैसा दुख होता होगा इसको, जब मैंने छाल निकाली मैं कैसे अनुभव करूं कि कैसा दुख होता होगा। अपन के दिमाग में ये चीजें नहीं आती, जो बहुत भोले भाले और सरल सच्चे मन के होते उनके मन में आती हैं दूसरे को तकलीफ। सुई के मन में कभी नहीं आता कि चुभे कैसे होंगे, सुई क्या जाने, वो तो चुभती है जिसको, उसको मालूम पड़ता कि कितनी तकलीफ हो रही। ऐसे ही तो अपन कांटे की तरह दूसरे को चुभते सो अपन को नहीं मालूम पड़ता कि वो कितनी तकलीफ हो रही, जब दूसरों कांटों बन के अपन को चुभत है जब अपन को मालूम पड़त के हैं सो हो। हाँ सीधा सीधा हिसाब है, कांटे को थोड़ी मालूम पड़ता कि चुभन क्या होती है, वो तो चुभने वाले को मालूम पड़ता। ऐसे लेकिन उनके मन में विचार आया कि कैसी तकलीफ होती होगी, तो क्या किया उन्होंने, उसी कुल्हाड़ी से और अपने जंघा में से थोड़ा थोड़ा सा छीलना शुरू किया। ऐसे ही तो उसकी भी छाल थी जैसी मेरे ये ऊपर है, तो ऐसे ऐसे छीलते गए, दुख तो बहुत हो रहा, बहुत तकलीफ हो रही, खून निकलने लगा, पर खून निकलते हुए भी चेहरे पर कोई तनाव नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है, बल्कि एक अजीब तरह की शांति है। अब समझ में आया छाल निकालने से उसे कितना दुख हुआ होगा, अपना दुख बिल्कुल नहीं लग रहा है, एक ही ख्याल आ रहा है कि उसे बहुत दुख हुआ होगा और मन को बहुत शांति है। मैंने जान लिया अब मैं अपने जीवन में किसी को कभी भी ऐसा दुख नहीं पहुंचाऊंगा, क्योंकि मैंने दुख की अनुभूति कर ली, मुझे भी ऐसा ही दुख होता है तो दूसरे को भी ऐसा ही होता होगा। घर वापस लौटते हैं, सारी धोती जो है खून से लथपथ है, माँ भाग करके आती है, पूछती क्या हुआ, किसने मार दिया, किसने कहाँ गिर गए थे, एक्सीडेंट हो गया, माँ कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन देखो माँ अब तुम्हें कोई भी दवाई मंगानी हो तो मेरे से मत मंगाना, और कम से कम किसी पेड़ की छाल मत मंगाना, क्यों माँ उस पेड़ को बहुत दुख होता है जिससे मैं छाल लेके आता हूं, तुम्हें कैसे मालूम पड़ा, माँ मुझे ये मालूम नहीं था कि उससे कैसा दुख होता, तो फिर मैंने जो है अपने जंघा को छील करके देखा, मुझे बहुत दुख हुआ, ऐसा ही उससे दुख होता। अब बताइएगा ऐसे लोग ही आगे जाकर के अपने जीवन को बहुत अच्छा बनाते हैं, तब अपन भी उनके अच्छे जीवन की प्रशंसा करते हैं, उनको संत कहते हैं, उनको सज्जन और साधु कहते हैं, यही तो है और क्या है इस संसार में। अगर हम भले पुरुषों की प्रशंसा करते हैं तो हमारे भीतर उनके जीवन से कोई प्रेरणा लेने का भाव भी आना चाहिए, ऐसी ये लोकानुप्रेक्षा है जो हमें सब जीवों से जोड़ती है। सबके सुख दुख को हम अपने सुख दुख जैसा मानने लगें तब समझना कि हाँ हमारी ये भावना सार्थक हो गई। ऐसी ही भावना कि इस श्लोक को किसी ने बनाया नहीं, ना ही मैं इस नए श्लोक को बनाया, इसलिए मैं अहंकार ना करूं, अपना भ्रम तोड़ूं, यहाँ जो मैं कर्ता बना बैठा रहता हूँ, कर्ता बन करके मैंने इसका ये करा, मैंने उसका वो करा, इसको तोड़ूं, सब जीवों से अपना संबंध और बढ़िया बनाऊं, यही लोकानुप्रेक्षा है। इसी भावना के साथ कि हम सब इस भावना से लाभ लें, बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर। हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक यह लग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा दिग दर्शन करने वाला। शिव के निष्कंटक पथ में विषकंटक होता हो, तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो, करके तब सैल नदी तट पर तरु तल पर साकी झड़ियों में समता रस पान किया करते, सुख दुख दोनों की घड़ियों में अंतर जाला
बंधन तड़ तड़ टूट पड़े खिल जावे अंदर की गलियां
Thank you.